श्री राधा गोविंद भगवान की उपस्थित से भक्तों का हार्दिक स्वागत है। से भक्तों से आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं, क्योंकि आज की जो विषय है ब्राह्मण का महानता के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सारे शिव अनुभवी भक्तों मेरे सामने बैठे हुए आशीर्वाद दीजिए। जो भी मैं कुछ प्रभुपाद की किताबों से पढ़ा हूं और प्रयास कर रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए, वो आप लोगों से बांटूं। तो कल श्रीमान भतराजपुर सुंदर वर्णन कर रहे थे कैसे हम भक्ति के संग में रहते समय किन चीजें को दक्षता पूर्वक अपनानी चाहिए। तो उसी प्रसंग को आगे लेके हम चर्चा करेंगे। जैसे कि अभी खटवांग महाराज स्वर्ग में देवी देवताओं के साथ राज्य युद्ध किए, देवी देवताओं के साथ रहते हुए असुरों के साथ युद्ध किए और सारे असुर परास्त हो गए। अभी सारे देवी देवता खटवांग महाराज के ऊपर संतुष्ट हो गए और उनको वरदान दे रहे। आपको क्या वरदान चाहिए बोलिए। तो उसके अनुरूप खटवांग महाराज पूछते, मेरे जीवन में कितना समय बचा है मुझे कृपया वो बताइए। उसके पश्चात जब उनको समझ में आता है कि केवल एक ही क्षण बचा हुआ है, तो खटवांग महाराज पृथ्वी लोक में आते हैं। पृथ्वी लोक में आके ब्राह्मणों का आश्रय लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम कल का श्लोक में पढ़ेंगे, खटवांग महाराज को बचपन में उसी प्रकार के संस्कार मिला था। घर में पुरोहित आया करते थे, भागवती कथा क्या करते थे, घर पे शालिग्राम भगवान की सेवा क्या करते थे, क्योंकि सूर्यवंश का ही डायनेस्टी में हम लोग अभी चर्चा करते आ रहे परंपरा वंशावली में। तो फिर उसका आगे श्लोक में बताएंगे कि क्यों ब्राह्मण का ही शेल्टर लिए, ब्राह्मण का आश्रय क्यों लिए खटवांग महाराज, उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं। क्योंकि स्वर्ग का देवी देवता जो कि जिनका सुंदर शरीर है, असीम सामर्थ्य है, शारीरिक सामर्थ्य है, भोग की कुछ भी कमी नहीं है, सत्वगुणी जीवन जी रहे, फिर भी वो दुखी है। क्यों? क्योंकि उनको जो जीवन का ध्येय मालूम नहीं है। इसलिए खटवांग महाराज ने भले उधर स्वर्गलोक में सोमरस था, रंभा उर्वशी मेनका नंदनकानन गार्डन था, भोग का कुछ भी कमी नहीं था, फिर भी वो छोड़ छाड़ के पृथ्वीलोक में आए, पृथ्वीलोक में आके ब्राह्मण का आश्रय लिए। तो आज हमारे लेक्चर, हमारे जो चर्चा का विषय रहेगा, इम्पोर्टेंट ऑफ ब्राह्मणिकल कल्चर एंड डिवोटी, भक्तों का और ब्राह्मणों का, ब्राह्मण संस्कृति का कितना महत्वपूर्ण है, उसके बारे में जो कुछ मैं पढ़ा हूँ सुना हूँ और आप लोगों के लेक्चर में जो कुछ सुना हूँ वही रिपीट करेगा इधर। तो असल प्रभुपा जी उनकी तात्पर्य बता रहे कि एक्चुअली ब्राह्मण यानी कि क्या होते हैं। तो प्रभुपा लिखते हैं, ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण मेंटेन द इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ण एंड आश्रम टू अटेन स्पिरिचुअल लाइफ विच इज एसेंशियल। जो ब्राह्मण जात होते हैं वो सारे वर्ण और आश्रम, जो चार वर्ण है, चार आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, इन चारों वर्ण और आश्रम का लोगों को वैदिक ज्ञान देते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति होगा। वो चीज एसेंशियल, जो कि हर आश्रम का यह मुख्य कर्तव्य है। तो इसलिए ब्राह्मण समाज का मुख्य माना जाता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, ब्राह्मण मीन्स फर्स्ट क्लास पर्सनालिटी या हेड ऑफ सोसाइटी, समाज का सर है। क्षेत्रीय मीन्स सेकेंड क्लास पर्सनालिटी या बाहु है, और वैश्यान की जांग है, शूद्रान की पैर है। तब ब्राह्मण क्यों मुख्य है? तो उनमें नौ क्वालिटीज होता है। भगवद गीता में कृष्ण बताते हैं 18:42, सम दम तपस्वच क्षति आर्जम एवच ज्ञान विज्ञान मास्तिकम ब्रह्म कर्म स्वावज। तो परम पूज्य महाराज जी एक लेक्चर में बता रहे थे, सम मीन्स मन को वश में करना। तो मन को कैसे वश में करेंगे? चक्रवर्ती पाद एक कमेंट्री देते हैं, मन को वश में करना यानी कि जैसे कि कोई हॉर्स ट्रेनर जो घोड़ा को ट्रेनिंग देते हैं, जब कोई नया घोड़ा को ट्रेनिंग देते हैं तो किन किन चीजों को दक्षतापूर्वक अपनाते हैं, ध्यान देते हैं, उसके बारे में महर्षि बता रहे थे। तो चक्रवर्तीपाद कमेंट्री में लिखते हैं मन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, उसके बारे में बता रहे थे। चक्रवर्तीपाद लिखते हैं, जैसे कोई हॉर्स ट्रेनर घोड़ा को जो ट्रेनिंग देते, नया घोड़ा को कोई अगर ट्रेनिंग देते हैं तो नया घोड़ा स्वभाव से ही उछलेगा, भागेगा इधर उधर। तो जो एक्सपर्ट ट्रेनर, जो अनुभवी एक प्रशिक्षक होते हैं, अनुभवी घोड़ा को प्रशिक्षक देने वाले व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, उसका जो रुइन है नाक से जो एक रस्सी डाला हुआ रहता है उसको ध्यान से पकड़ते, भले घोड़ा स्लो चल रहा है फिर भी ध्यान से पकड़ते हैं, घोड़ा भाग रहा है फिर भी उसको अटेंटिवली पकड़ते। तो चक्रवर्ती बात लिखते हैं, वैसे मन को कंट्रोल करना यानी कि कभी कभी मन हमारे साथ देगा, कभी कभी हमारे विपरीत दिशा में जाएगा, उसी समय घोड़ा यानी कि मन और जो रुइन को पकड़ने वाला व्यक्ति हॉर्स ट्रेनर यानी कि बुद्धि। तो हमें भी जीवन जीते समय बुद्धिमत्ता से कार्य करना चाहिए, मेरे भक्ति के लिए कौन सा चीज अनुकूल है कौन सा प्रतिकूल है उसके बारे में दक्षतापूर्वक हमें अपनाना चाहिए। यह है सम मीन्स मन को कंट्रोल करने का, दम दमयांश इंद्रियों को कंट्रोल करना। तो हम लोग एज ए कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पे है, नवदीक्षित स्तर पे हम लोग प्रयास करें थोड़े बहुत इंद्रियों को वश में करने का, इंद्रियों को शुद्ध करने का या भक्ति में लगाने का। तो हमारे लिए वो कभी कभी असंभव हो जाता है, परंतु महाराज बता रहे थे हम लोगों ने एक छोटा सा सोल्जर या कमांडर जैसा, परंतु हमारे गुरुदेव यानी कि वो अतिरथी महारथी जैसा। तो हम क्या करेंगे, उनके दिए हुए इंस्ट्रक्शन, उनके दिए हुए उपदेश के हिसाब से और उनको दिख के इंद्रियों को वश में करने के लिए प्रयास करेंगे तो आसान हो जाएगा, क्योंकि वो दिन दिखे है और उनकी मार्गदर्शन है और साथ साथ उनकी जो प्रतिनिधि है हमारे साथ रह रहे, उनकी कृपा है वो हमें उनकी प्रतिनिधि को हमारे साथ रखे है, जिसके द्वारा एक नव एक कनिष्ठ अधिकारी का स्तर भी, कनिष्ठ अधिकारी स्तर का भक्त भी वो स्तर तक पहुंच पाएगा। वैसे तपस्या प्रोपाई लिखते हैं, तपस्या का डेफिनेशन प्रोपाई देते हैं, तपस्या मीन्स गुरु की इस आंदोलन को आगे लेने के लिए कोई भी स्टेप उठा लेना, इसको तपस्या बोलते हैं वास्तव में, ना कि कोई योगी कोई बाहर हिमालय में जाके बर्फी में ठंडी में ऐसा बैठना, नहीं। बाद में शौचान की आंतरिक और बाहरिक स्वच्छता, समान दमन तपस्या क्षति क्षमा करना लोगों को, कोई अगर हमें मिसबिहेव कर रहा है इंसल्ट कर रहा है फिर भी प्रयास करने का एटलीस्ट हमारे लेवल में, समान दमन तपस्या क्षति आर्जवम, आर्जव मीन्स विग्रहों की सेवा करना, विज्ञान ज्ञान विज्ञान मास्तिकम, तो हमें शास्त्रों का अध्ययन करना उसी से जीवन जीना और एक आस्तिक बनना, यह ब्राह्मण का गुण होता है। तो ब्राह्मण इसलिए समाज का मुख्य माना जाता है और ऐसा ब्राह्मण भगवान बोलते कि मुझे सबसे प्रिय है। हम लोग डेली यज्ञ में गाते हैं ब्राह्मणस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य सह, तो बोलते कि ब्राह्मण भगवान के मुख होते हैं। तो इसलिए वैदिक शास्त्र में बताया गया कि अगर हम लोग ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं तो भगवान उनके मुख से खाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण के शरीर में सूर्य अग्नि खम वायुदेव की निवासी पितरलोक की जो जितने सारे जो अलग अलग जो देवी देवता है उनकी शरीर सारे जो देवी देवता ब्राह्मण के शरीर में निवास करते हैं, इसलिए उनको भूदेव बोलते हैं। हम लोग जगन्नाथ अष्टकम में कहते हैं ना, रथारूढ़ो गच्छन पथि मिलित भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भाव प्रतिपद मुपाकर्ण्य संगमम दया सिंधु बंधु सकल जगतां सिंधु सुदया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो जो भूदेव है ब्राह्मण वो क्या करते, उनका मुख से कुछ शब्द निकलता है तो केवल भगवान की ग्लोरिफिकेशन, इसलिए ब्राह्मण मुख्य माना जाता है। या हाँ वेद का और एक मंत्र है, तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति स्थूरयः दिव्यवाच्युतम तद विप्रश्य विपर्याय जागरूवासम समिन्दते विष्णु यत् परमं पदम। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो क्या होते हैं, ब्राह्मण का एक मुख्य कर्तव्य है, कुछ बोलते हैं तो भगवान के बारे में बोलते हैं, भगवान के बारे में गुणगान करते हैं, ब्राह्मण से मुख आसित। हाँ तो इसलिए ब्राह्मण में से मुख्य माना जाता है। और प्रभाज कमेंट्री में लिखते हैं जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो कभी भी दूसरे से चैरिटी नहीं लेते हैं, मीन्स वो बोलते हैं कि जो ब्राह्मण यानी कि भगवान के नित्य मुख्य सर्वेंट है, जिसे भगवान पूरे दुनिया का मालक है, सर्वस्व चाह नहीं कौन सा भागवत का श्लोक दसवां चैप्टर का श्लोक है, अहम सर्वस्व प्रभव मत सर्व प्रवर्तते, इस दुनिया में जो भी कुछ प्रॉपर्टी है उसका मालक है भगवान विष्णु या नारायण या कृष्ण, अहम सर्वस्व प्रभव, भगवान सारे प्रॉपर्टी का मालक है, इसलिए भगवान के सर्वेंट ब्राह्मण भी सारे प्रॉपर्टी का मालक है। तो वो ब्राह्मण के पास ये सारे जो प्रॉपर्टी को केयर करने का, उनका जो ट्रेजर हाउस को संभालने का समय नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि उद्देश्य क्या रहता है, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, ये भागवत का वर्णन आता है ब्राह्मण का कर्तव्य, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य, अनुग्रह चरन्ति न्यूनम भूतानि भवानी जनार्दनस्य। जो लोग ने जनस्य कृष्णात विमुखस्य दैवात, कृष्ण से विमुख होके अधर्म का आश्रय लिए हैं और कर्म बंधन से फंसे हुए, ब्राह्मण क्या करते हैं ऐसा लोगों के पास जाते हैं और उनको एनलाइटमेंट करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा प्रशिक्षित करते हैं, जिसके द्वारा उनका जीवन का ध्येय उनको समझ में आएगा। इसलिए ब्राह्मण क्या करते हैं, दूसरे से चैरिटी भीख नहीं लेते हैं, वो क्या करते हैं भगवान की सेवा के लिए जो कुछ जरूरत है उतना ही लाते हैं और जितना जरूरत नहीं उनको छोड़ देते हैं उतना। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि आउट ऑफ ह्यूमिलिटी ब्राह्मणाज आर एक्सेप्टिंग चैरिटी फ्रॉम वैश्य एंड क्षेत्रीय। नम्रता के कारण क्या करते हैं, कुछ धन सब इकट्ठा करते हैं वो भी भगवान की सेवा करने के लिए। इसलिए ब्राह्मण समाज का मुख्य माना गया है। भगवान बोलते हैं ऐसे ब्राह्मण मुझे इतना प्रिय है, तीसरा स्कंद का एपिसोड में आप लोग सब याद रहेगा, जब चतुष्क कुमार जाते हैं वैकुंठ को और उसमें द्वारपाल उनको रोकाते हैं, उनको छोड़ते नहीं, अलाउ नहीं करते वैकुंठ में। तभी उस समय जब भगवान विष्णु को समझ में आता है कि चतुष्क कुमार ने श्री जय विजय ने चतुष्क कुमार को रोका लिया, तो उस समय भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होते और चतुष्क कुमार को साथ साथ श्री जय विजय को साथ साथ जितने सारे वैकुंठ प्लांट में जीव थे, लोग थे, उन सबको ये संदेश देते भगवान। एक मिनट मैं पढ़ के सुनाता हूं। तो भगवान बोलते हैं मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है, मेरे सेवकों द्वारा किया गया अपराध अनादार मेरे द्वारा किया गया अनादार जैसा है। तो भगवान बोलते हैं ब्राह्मण मुझे इतना प्रिय है, इवन अगर मेरा हाथ गलती से उठ जाता है तो मेरे चार हाथ काटने के लिए मैं हिचकिचाता नहीं हूं। ये भगवान की जो ब्राह्मण को रेस्पेक्ट है। या इवन आप सुनेंगे जब दसवां स्कंद में 84 चैप्टर में और 60 चैप्टर में, जब पहले तो जो सांप वगैरह नारद मुनि को अपराध करते हैं, नारद मुनि के साथ ठट्टा मजाक करते हैं, तो ब्राह्मण बोलते हैं अगर श्री भगवान बोलते हैं कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण को अपराध कर रहा है तो उसका कुल ही विनाश हो जाता है, इवन मेरे यदुकुल भी क्यों ना हो। इसलिए हम देखते हैं जो यदुवंश का नाश हो गया। और जो नृग महाराज के एपिसोड में लिखते हैं अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण का धन संपत्ति चुराता है तो उसको, मैं आपको डिटेल्स पढ़ के सुनाता हूं, तो बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति वन होस्टिल ब्राह्मणास प्रॉपर्टी विल गो टू कुंभीपाक हेल, वो कुंभीपाक नरक में जाएगा कोई अगर ब्राह्मण का संपत्ति चुराएगा तो। इसलिए एटलीस्ट हम लोग ब्रह्मचर्य में रह रहे अलर्ट रहना चाहिए, कोई किसी का चीज अगर गलती से पड़ा भी है तो नम्रता से बोलना चाहिए प्रभु जी आपकी सामान है ले लीजिए। फिर आगे बोलते वो खाली नहीं जाएगा एलोंग विथ रॉयल फैमिली मेंबर, उनके सारे जो फैमिली मेंबर क्या बोलेंगे उनका पारिवारिक स्वजन के साथ वो कुंभीपाक नरक में जाके कष्ट उठाएगा। फिर आगे बोलते हैं कि उतना ही नहीं उसके पश्चात उसको स्टूल ओर्म का शरीर मिलेगा, बिष्टा का कीड़ा का शरीर मिलेगा, कब तक, फॉर 60,000 ईयर, 60,000 साल के लिए उसको बिष्टा का कीड़ा बनना पड़ेगा और कोई ब्राह्मण का संपत्ति खाली चुराया तो हैवी पनिशमेंट। फिर आगे बोलता है कि उतना ही नहीं देन ही बिकम स्नेक टू ट्रबल अदर, उसके पश्चात उसको जहरीला सांप बनना पड़ेगा जो ब्राह्मण का संपत्ति चुराया है और उसको कई यातना भोगना पड़ेगा, साथ साथ दूसरे को परेशान करेगा। महाराज ने बोल रहे थे कि लेक्चर में द स्नेक ऑफ फॉल्स ईगो, उनके लेक्चर में बता रहे थे, हमने देखा सांप कभी भी दूसरे दो दो नहीं घूमते, अकेले ही घूमते, इतना अहंकारी होते हैं। फिर आगे बोलते हैं खाली इतना ही नहीं देन इफ वन कोई अगर व्यक्ति इफ वन ट्रीट हार्श टू ब्राह्मणा ही बी लॉस्ट ऑल हिज ऑपुलेंस, हर कोई ब्राह्मण को कुछ कटु शब्द बोलता है तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये ब्राह्मण का शक्ति जिनको भगवान भी मीन्स दंडवत करते हैं क्योंकि वो भूदेव है, द्विज है, दूसरे जन्म होता है उनका। महाभारत में पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को और ब्राह्मण की ख्याति बता रहे हैं एक स्टोरी के द्वारा। तो पितामह भीष्म बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, हे युधिष्ठिर महाराज आपने जिसे प्रश्न पूछा ब्राह्मण का महत्व क्या है उसके बारे में मैं एक कथा के रूप में बताता हूं। एक बार स्वयं भगवान विष्णु पृथ्वी माता को पूछते हैं, हे धरणी आप तो सारे जीवों का कष्ट सहन करते हो फिर भी उनको कुछ प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हो बल्कि उनको जो भी जरूरत है वो सब उनकी पूरी कर रहे हो, पर मेरा प्रश्न है ये जो घर गृहस्थ में लोग फंसे हुए हैं, पाप कार्य में लगे हुए हैं, उनका उद्धार का मार्ग क्या है। तो इस समय पृथ्वी माता धरणी देवी जोगी, उनको संस्कृत में धरणी बोलते हैं। धरणी देवी बोलती है, हे भगवान, आप तो परात्पर ब्रह्म है, आप अखिल ब्रह्मांड का नायक है, आपको सारे ज्ञान है, फिर भी आपका ये महानता कि आप मुझे पूछ रहे हो, तो उसका उत्तर मैं ये दे सकता, जो भी कोई व्यक्ति कोई अगर गृहस्थ को कोई कोई गृहस्थ अगर ब्राह्मण की सेवा कर रहा है तो सारे पाप से मुक्त हो जाता है। वो बोलते कि ब्राह्मण ब्राह्मण इतना महान होते हैं, इतना महान होते हैं, वो इंद्र को भी श्राप दे सकते हैं, उनका शरीर में हजार आंक आ सकता है इंद्र को श्राप दे के। उतना महान होते हैं समुद्र का पानी को भी वो नमकीन बना सकते हैं, उतना नहीं। वो आगे बताते हैं, ब्राह्मण इतना शक्तिशाली होते हैं वो चंद्रमा में भी कलंक लगा सकते हैं, चंद्रमा में भी कलंक लगा सकते हैं, समुद्र का पानी को भी नमकीन कर सकते हैं, और तीसरा बताते हैं इंद्र का शरीर में भी हजार आंख दे सकते हो। तो इसके प्रश्न में हम लोग थोड़ा सा टॉपिक हट के चर्चा करेंगे, समुद्र का पानी नमकीन क्यों है, हमारे साइंस क्या बता रहा है। जैसे कि बारिश होता है तो सारे जो घर का रोड का पानी ड्रेनेज में जाता है, ड्रेनेज का पानी कैनाल में जाता है, कैनाल से पानी नदी को जाता है, नदी से समुद्र में। और जब समर सीजन आता है गर्मी का दिन, तभी वाटर कंटेंट वेपर होता है, वाष्पीभूत होकर पानी ऊपर चला जाता है, पर ये जो पानी बहते बहते गया वो सारे पानी नमकीन हो जाता है, और नमकीन के कारण नमकीन जो कंटेंट से जो नमकीन चीजें है वो पानी में ही रह जाता है, और जो हल्का है पानी वाष्पीभूत होकर ऊपर चला जाता है, इसलिए समुद्र का पानी नमकीन है। पर ये गलत है। अब देखिए थोड़ा कंटेम्पलेट करेंगे तो भगवद गीता में कृष्ण बोले 15 चैप्टर में, गामा विश्व च भूतानि धारयामि अहम ओजसा कृष्णामि औषधि सर्व समभूता रसात्मक। थैंक यू। तो भगवान पूरे ब्रह्मांड को अगर धारण किए है अपना अपना ऑर्बिट में, तो सारा छोटा सा एक नमकीन को क्यों ऊपर नहीं ले पाएंगे। इसलिए साइंस गलत है, प्रूव होता है, बराबर ना। किसने आर्गुमेंट कर सकता, अरे हम लोग पांचवा स्कंद में स्वयं मनु का एपिसोड में पढ़े हैं, जब प्रियव्रत महाराज की प्रसंग में जो कैसे उनके रथ से ये समुद्र खोद गया था, तो लवण सागर के बारे में बनाता है। नहीं, वो था सत्वा मनवंतर का, सॉरी पहला मनवंतर का, हम चर्चा करें सत्वा मनवंतर का। तो ऐसा ना, थोड़ा अगर शास्त्र देखेंगे, अगर स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी करेंगे, तो ये समझ में आता है कि शास्त्र परफेक्ट है, परंतु साइंटिस्ट का अपूर्ण ज्ञान के कारण वो क्या बोलते जो लास्ट कंक्लूजन तक जो आखिर तक वो नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसलिए हम मुझे साइंस इतना परफेक्ट नहीं है, हम इस ये कर रहे हैं। तभी आइए टॉपिक के हिसाब से, ब्राह्मण में ये शक्ति है और सूर्य को भी सॉरी समुद्र का जल भी नमकीन कर सकते हैं, इंद्र को भी श्राप दे सकते हैं, डिटेल से आप लोग ढूंढ सकते हैं। फिर तीसरा है कि जो हाँ चंद्रमा में भी कलंक लगा सकते हैं, उसके बारे में हमने सुनते हैं, जैसे कि गुरु बृहस्पति का पत्नी तारा के साथ जब चंद्रमा का गलत व्यवहार होता है तभी बृहस्पति ने श्राप देते हैं, जिसके कारण चंद्रमा में दाग है। तो ये है ब्राह्मण। फिर अगर आप देखेंगे ब्राह्मण इतना महान है, परंतु ब्राह्मण से भी वैष्णव कहीं श्रेष्ठ है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु डिस्कशन हुआ था कुहूर में, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को पूछते जीव का साध्य साधन तत्व के बारे में बताइए। तो उस समय रामानंद राय विष्णु पुराण का एक श्लोक कोट करके चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं, वो बताते हैं कि जो जीव का साध्य और साधन तत्व ये है, वर्णाश्रम चार अवता पुरुषेन परपुंसा विष्णु आराध्यते पंथा नान्य तत्व तोषो कारणम। तो बोलते कि जो वर्ण और आश्रम है उनका उद्देश्य है कि भगवान विष्णु की सेवा करना। द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड हेड लॉर्ड विष्णु इज द वर्शिप्ड बाय द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी इन द सिस्टम ऑफ वर्ण एंड आश्रमा। सारे वर्ण आश्रम का उद्देश्य है कि भगवान विष्णु की सेवा करना। देर इज नो अदर वे टू सैटिस्फाई द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड हेड वन मस्ट बी सिचुएटेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द फोर वर्ण एंड आश्रमा। चार वर्ण, इसलिए हर किसी का कर्तव्य है कि व्यक्ति को अपने वर्ण और आश्रम में स्थित होकर भगवान विष्णु की संतुष्ट करने के लिए कार्य करना चाहिए। उसके प्रश्न में उसके जो उत्तर में महाप्रभु सैटिस्फाइड नहीं होते, वो बोलते हैं कि प्रभु कहे एहो वाहो आगे कहो और राय कहे कृष्ण कर्मार्पण सर्व साध्य साधन सार। तो महाप्रभु पूछते ये तो बाह्य कारण है, आंतरिक कारण और क्या क्या होता है। तो चैतन्य चतुर्मुख का मध्य लीला में आठवां चैप्टर में डिटेल्स वर्णन आता है कैसे जो वर्णाश्रम से परे है व्यक्ति का जो अपना स्वरूप है कृष्ण नित्य दास शिविर में सेवा करना, फिर जो बारह रस है दास्य साक्ष्य वाश्चल्य माधुर्य उसके बारे में माधुर्य कैसे सबसे श्रेष्ठ है उसके बारे में चर्चा होता है। तो हम लोग चैतन्य भागवत के हिसाब से जाएंगे जो ब्राह्मण से वैष्णव कितना श्रेष्ठ है। तो प्रभा लिखते हैं तात्पर्य में ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, एक है ब्राह्मण पंडित, दूसरा है ब्राह्मण वैष्णव। ब्राह्मण पंडित यानी कि वो शास्त्र का अध्ययन करते हैं और लोगों का भविष्य देखेंगे, पूजा पाठ कर्मकांड करेंगे, परंतु ब्राह्मण वैष्णव यानी कि वो होते हैं जो ये सब चीजें का ज्ञान तो देते ही है परंतु उससे भी परे जो कि सर्वोच्च ज्ञान है, सर्वोच्च ज्ञान है उसका भी ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए ब्राह्मण वैष्णव श्रेष्ठ माना जाता है ब्राह्मण पंडित से। तो वैष्णव का महानता क्या है उसके बारे में वर्णन आता है चेतन भागवत में। वृंदावन ठाकुर लिखते हैं, जे देश जे काले वैष्णव वेर अवतार ताहर प्रभावे लक्ष्य योजन निस्तार। बोलते कि जे देश जे काले वैष्णवेर अवतार, जिस देश में जिस काल में वैष्णव प्रकट हुए हैं उनकी प्रभाव से लक्ष्य योजन का उद्धार हो जाता है। एक योजना की 8.5 किलोमीटर। फिर आगे बोलते हैं कि वैष्णव का और क्या महानता है, पाद तले पृथ्वी खंडे अमंगल तुष्टि मात्रे दश दिशा होयशो निर्मल। वैष्णव में ये शक्ति है वो जब नाचते हैं जय सचिनंदन गौर हरि, तो जब नाचते हैं तो पृथ्वी का सारा अमंगल नष्ट हो जाता है। फिर उनका दृष्टि जहां जाता है दश दिशा सुनिर्मल, दश दिशा का उद्धार हो जाता है, पापी लोगों का सब उद्धार हो जाता है। फिर आगे लिखते हैं, बाहो तोले नाचे तेश्वर गैर विघ्न नाश हे न जस हे न नृत्य हे न तोर दास। वो बोलते हैं कि अगर हाथ ऊपर करके नाचते हैं बाहुतुली, इसलिए हम ईश्वर में मंगला आरती में या सारे आरती में भक्त लोग बोलते हैं कि हेल्पलेसली द्रौपदी जैसा गजेंद्र जैसा हमें पुकारना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके द्वारा हमारा तो बेनिफिट होता है, साथ साथ स्वर्ग का सारे जो देवी देवता है उनका भी कल्याण होता है। क्योंकि 5वां स्कंद में हम लोग पढ़े देवी देवता तड़प रहे स्वर्ग लोक में, किम दुष्कर न कृति भी तपावृतेर दान भी द्विजय न फलगुना न यत्र नारायण पाद पंकज ब्रह्म सुते स्त्री अतिशय इंद्र उत्सवे। वो बोलते कि धिक्कार है हमारे दुष्कर तपस्या का, दान व्रत तप यज्ञ का, क्योंकि उनका इतना पुण्य मिल गया इधर हमें नहीं बोलते हैं फिर भी भोग का सामग्री आ जाता है और नारायण पाद पंकज का स्मरण ही नहीं हो पा रहा है, इसलिए उधर तड़प रहे। प्रभुपाद एक लेक्चर में बता रहे थे, व्हाट एवर डेमिगॉड्स आर, प्रभुपाद लिखते उनकी लेक्चर में बता रहे थे, जो स्ट्राइविंग कर रहे जो पाने के लिए तरस रहे वो चीज आपको मिल रहा है भक्ति कलयुग में। ये तो ये है मीन्स भक्ति का महानता, वैष्णव का महानता। फिर आगे और एक श्लोक आता है उसमें कविराज गोस्वामी सॉरी बुनाद ठाकुर लिखते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग बोलिते न पारे सुनी ले हो तरु तरे। जो वैष्णव होते खाली अपना उद्धार नहीं करते, देवी देवता का उद्धार नहीं करते, इवन पशु पक्षी कीट पतंग उन सबका भी उद्धार करते हैं। कैसे, बाय चैंटिंग लाउडली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो तो बोल नहीं पाते परंतु सुनी ले हो तरु तरे, वो सुन के उनका जीवन कल्याण हो जाता है। यह है वैष्णव का कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए। या भागवत और बताते कि वैष्णव का महानता क्या है उसके लिए भागवत सॉरी चैतन्य भागवत में और एक वर्णन आता है जो कि अद्वैत आचार्य प्रार्थना कर रहे हैं। वो बोल रहे कि श्वेत दीप निवासी हो ऐसा वैष्णव चैतन्य प्रसादे लोके देखाइला सब। ये वैष्णव पहले अप्रकट रूप में थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु जैसे प्रकट हुए तभी चैतन्य प्रभाव सबे देखाइला। चैतन्य महाप्रभु की प्रकट के कारण सारे लोगों को वैष्णव मिलना, वैष्णव को दर्शन कर पाना संभव हुआ, इसलिए मीन्स इतना वैष्णव का इतना महानता है। फिर भागवत में भक्त का महानता के बारे में और मनाता है, वो बोलते हैं कि हाँ भगवत विदा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थ कुर्बंदी तीर्थानी स्व अंतस्तन गदभूता। तो जो भक्त होते भगवत विदा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो, वो क्या करते हैं एक साधारण प्लेस को भी तीर्थ स्थान बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्व अंतस्तन गदभूता, जो भगवान गदाधारी है, गदा पाणी कृष्ण है, विष्णु है, उनको हमेशा उनके हृदय में लेके घूमते रहते हैं, इसलिए साधारण जाकर भी तीर्थ स्थान बना लेते हैं, इसलिए वैष्णव महान माना जाता है। और इसका रेलिवेंट एग्जाम्पल हमारे सामने श्री प्रभुपाद जी बैठे हैं। देखिए आज से 100 साल पहले या 19 श्री प्रभुपाद जी विदेश में प्रचार किए 1965 और उनकी जो आविर्भाव हुआ था 1896, उसी पहले केवल इंडिया में वो भी बंगाल उड़ीसा प्रांत में थोड़े बहुत वैष्णव क्या होते मालूम था, या राजस्थान में महाराष्ट्र में अलग अलग जगह में थोड़े बहुत कुछ वैष्णव हुए थे, परंतु श्री प्रभुपाद जी का ये महानता देखिए, पूरे विश्व में वैष्णव जाति का प्रचार किए और उनका महानता दिखाया, जिसके द्वारा जो लोग कई जन्म से तड़प रहे थे उन चीजें उनको मिला और वो इतना खुशी में आज है। यह है एक वैष्णव का योगदान। तो ऐसा एक सुंदर स्टोरी आता है, मैं आपको बोल के एंड करेगा। तो हम लोग सुनते प्रसंग जब श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, ये तीनों का शिक्षा पूरा होता है जीव गोस्वामी के अंडर वृंदावन में। उसके उपरांत जब बिरहामपुर में उनकी सारी किताब चोरी हो जाता है, फिर श्रीनिवास आचार्य आदेश देते हैं नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु को, श्यामानंद आप जाइए उत्कल प्रांत में प्रचार कीजिए और नरोत्तम आप बंगाल में प्रचार करो। फिर जब श्यामानंद प्रभु ओडिशा में अलग अलग गांव में प्रचार कर रहे थे, एक्चुअली मुझे ही मालूम नहीं था, मेरा पिताजी जब चले गए तभी मैं घर गया था, तो हमारे घर के जस्ट 5-7 किलोमीटर में एक गौड़ीय मठ है, वो श्यामानंदी गौड़ीय मठ है, और थोड़ा सा आगे एक होम टाउन है, उधर बकरेश्वर पंडित का आके ये है मीन्स शाखा है, मीन्स ऐसा प्रचार हुआ था पूरा उड़ीसा में पहले 1600 सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। फिर बाद में जब उड़ीसा में श्यामानंदपुर ने बहुत प्रचार किए, फिर बाद में श्यामानंदपुर चले गए 1630 में श्यामानंदपुर चले गए, और उनके पश्चात उनकी जो समाधि है, अगर आप ओडिशा जाएंगे तो एक जगह है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, उसके पास एक गांव है नरसिंहपुर करके, उधर अलग अलग सब महंत मठ को संभाल रहे थे, श्यामानंदपुर का जो समाधि है मठ को। तो ये जो श्यामानंदपुर का जाने का 10-20 साल के पश्चात एक मठ एक ये थे महंत थे, उनका नाम था चक्रवर्ती तीर्थ महंत, चक्रवर्ती महंत चक्रवर्ती तीर्थ, वो क्या कर रहे थे उधर सेवा कर रहे थे, और जैसे कि इस्कन में हमारे कई यंगस्टर ब्रह्मचारी है वो मठ में हार्ले कुछ एक दो भक्त होते हैं। तो जो महाराज जी वो मठ में रह रहे थे सेवा कर रहे थे, और उनका उम्र हो गया 75-80 ईयर, और 80 साल की उम्र में उनसे सेवा नहीं हो पा रहा था क्योंकि मठ था, मठ के पीछे कुछ खेती था मठ का। आज भी ये उड़ीसा का कल्चर है, जो मठ और मंदिर होते आस पास का जो लोग उनको जमीन दान देते हैं मंदिर चलाने के लिए, विलेज में टेम्पल रहा तो ये स्पेशलिटी होता है उसका। इवन हमारे गांव में जगन्नाथ मंदिर है, और जगन्नाथ मंदिर का अराउंड 70-80 एकर जमीन खाली जगन्नाथ मंदिर को चलाने के लिए उसी समय मीन्स जो लैंडलॉर्ड्स है डोनेट करके रखे हैं, आज जो पंडित लोग वही चला रहे हैं। तो ये जो श्यामानंद प्रभु का समाधि था, और साथ साथ सुंदर विग्रह है उनका नाम है हाँ श्री श्री राधा मोहन जीव, उनकी सेवा कर रहे थे वो महंत। फिर जब उनकी उम्र हो गया सेवा नहीं हो पा रहा था, वो एक बार रोने लगे भगवान के सामने, भगवान मेरे से सेवा नहीं हो पा रहा है, प्रयास कर रहा हूँ मैं, आप ही कुछ कीजिए। और उसी समय बारिश का समय आया, और जो जमीन को आप प्लोइंग करते हैं, मशागत बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलेंगे प्लोइंग को, मशागत है ना, तो मशागत करने का समय आया, और उसी समय ये देखे कि मैं बूढ़ा हो गया, कुछ मेरे शारीरिक क्षमता नहीं कि मैं कुछ कार्य कर पाऊँ, तो भगवान सामने रोते हैं। फिर बाद में रो रो के और रात को सो जाते हैं। फिर जब सुबह उठते हैं, सुबह उठने के पश्चात और भगवान की मंगला आरती करने के लिए वो जाते हैं, और देखते हैं तो मंगलारती में भगवान की जो शरीर सब धूल धूसर है और बासरी नहीं है। तो इसमें वो सोचते कि शायद मेरे से कुछ अपराध हो गया, फिर बाद में वो बासुरी कहाँ ढूंढते हैं, वो सोचते शायद मैं गलती से कहाँ रख दिया होगा, उनको नहीं मिलता है। फिर बाद में जब थोड़ा सा शोभे होता है तभी एक व्यक्ति दर्शन के लिए आता है और बोलता है महंत जी कितना सुंदर खेती किया आपने, आपका सुंदर लैंड पूरा अच्छा से आपकी जो जमीन प्लोइंग हुआ है मशागत किया है। तो ये महंत को लगता है शायद मेरा ये मजाक उड़ा रहा है क्योंकि बाकी सबका ये हो गया मशागत हो गया, मेरा जमीन ऐसे ही पड़ा है इसलिए शायद मेरा मजाक उड़ा रहे। फिर बाद में दूसरे के व्यक्ति आता है बोलता कि अरे ये जो बासुरी है और लेके बासुरी आता है, बोलता कि ये जो खेती से मैं बासुरी उठा के लाया ये खेती में पड़ा था ये बासुरी जो भगवान की फ्लोट और बहुत सुंदर आप प्लोइंग किया मशागत किया। तो इस समय वो महंत जी जाते हैं दिखते कि उनका जो पूरा जमीन था 7 या 10 एकड़ वो पूरा मशागत हो गया था और वो जमीन से उनको बासुरी मिला। तो रोते भगवान को प्रार्थना करते भगवान आपने ऐसा कैसा दिव्य कार्य किया मेरे शक्ति जीव के लिए। तो मैं बताने का उद्देश्य यह है कि एक वैष्णव में ये शक्ति होता है वो भगवान भी उसी के लिए क्या करते हैं, इतना भगवान उसके लिए बिक जाते हैं वो वैष्णव का तो केयर करते हैं साथ साथ पूरे विश्व का भी वो केयर करते हैं। तो आज भी मुंशी कहने का उद्देश्य यही है, हम इस प्रसंग से यही सीख सकते भले हम भूल जाते हैं हमने क्या भगवान ने सेवा किया, क्या पूजा किया है, क्या आराधना किया है, पर भगवान कभी नहीं भूलते हैं, इसलिए ना भक्ति मार्ग इतना दिव्य है। तो इस प्रसंग में हमने ये सुना कि ब्राह्मण का महानता क्या है, उसके उपरांत वैष्णव कितने महान होते हैं। तो शॉर्ट में हम लोग देखेंगे तो आज के टॉपिक ये था चॉइस हमारे हाथ में, जैसे कि खटवांग महाराज के हाथ में चॉइस था, महाराज लेक्चर में बता रहे थे जो दुनिया है द्वंद्व से भरा हुआ है, आज किसका मैरिज हुआ तो आज ही किसका डाइवर्स हुआ होगा, आज किसका बच्चा जन्म हुआ है तो कोई बूढ़ा का आज ही मृत्यु हुआ होगा, ठंडी गर्मी बारिश धूप ये सब जो दुनिया गीता का सार ये है दुनिया पूरा द्वंद्व से भरा हुआ है। बट वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड बट वी कैन चेंज आवर कॉन्शियसनेस, हम इस दुनिया को बदला नहीं सकते परंतु हमारे चेतना को बदल सकते हैं इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली। इफ वी चेंज आवर कॉन्शियसनेस देन वी कैन चेंज आवर कल्चर, अगर हम व्यक्ति के रूप में और सामूहिक रूप में हमारे भावना को परिवर्तन कर लेते हैं तो हमारे संस्कृति बदलेगा और जिसके द्वारा व्यक्ति को परफेक्शन प्राप्त होगा। इसलिए प्रभुपाद का जो दिव्य आंदोलन का उद्देश्य यही है कि जन्म सार्थक करी कर परोपकार, खुद वैष्णव बनो ब्राह्मण बनो और दूसरे को ब्राह्मण वैष्णव बनाओ, तो यह उद्देश्य होना चाहिए। तो ये जो नव साधक हम लोग अपने अपने अनर्था अपने अपने बैड हैबिट हमारे जो बुरे इंप्रेशन के कारण संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी अगर इंटेंसली प्रार्थना करेंगे और भक्तिमय मार्ग को अगर गंभीरता से आचरण करेंगे तो इसके अलावा दूसरी कुछ कहाँ सुख दूसरे कहाँ सुख ढूंढने का सवाल ही नहीं रहेगा। जितने कि हम देखते हैं भागवत काल प्रसंग में कैसे इतने सारे लोग भोग भोगे हैं परंतु उसके पश्चात बोल रहे कि एक्चुअली हमने भोग नहीं भोगा बल्कि भोग ने हमें भोग लिया। ओहो इमम पश्यतमे विनाशम तपोशिनम सत चरित्र बतस्यो अंतर्जले बारी चरो प्रसंगात प्रचोदितम ब्रह्म चिरम धृतो यत। सबरमणि रो रहे थे और क्या बोले, ओहो इमम पश्यतमे विनाशम, देखो देखो मेरा कितना विनाश कर में बैठा, जिसकी तपस्या के द्वारा इतना धन संपत्ति कमाए इतना सुंदर महल बनाए मानता राजा भी अपने आप को पीछे हट गए थे, 5,000 पुत्र जन्म लिए 50 कन्या के साथ वो एंजॉय किए, उसके पश्चात वो बोल रहे कि देखो देखो मेरा कितना विनाश कर में बैठा, ओहो इमम पश्यतमे विनाशम तपोष्णो सत चरित्र व्रतोष्यो, मेरा कितना अच्छा कैरेक्टर था सोसाइटी में, मैंने गलती क्या मैं, ओहो इमम पश्यतमे विनाशम तपोष्णो सत चरित्र व्रतोष्यो अंतर्जले बारी चर प्रसंगात, अंतर्जल जल के अंदर बारी चर दो मछली का संग के कारण में विचलित हो गया, प्रचोदितम ब्रह्म चिरं धृतो व्रत, जो मैं गिर गया इतना उच्च स्थिति से, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, संग त्यजत आज का श्लोक मेरा याद नहीं आ रहा है, बोले संग त्यजत हमें जो इंद्र भोग की मुमुक्षी है, संग त्यजत मुमुक्षी इंद्रिय भोगान, जो इंद्रिय भोग के व्रत लेके लोग जीवन जी रहे उनका संग से हमेशा दूर रहो, या शरण भट्टाचार्य को महाप्रभु बोलते हैं वही प्रसिद्ध श्लोक है, निष्किंचन से भगवत भजन उन्मुख से प्रार पार जिगामी से भगवत सागर से संदर्श नाम विषय नाम यथोचित तो हा हंता हंता भवंतो मिध्ये है। तो बोलते हैं इसलिए हमें केवल एक जो वैरागी है उनके पास 3 ही ऑप्शन है, कोई माला नहीं छोड़ने का, कोई भागवत नहीं छोड़ने का और भक्तों की सेवा नहीं छोड़ने का, इसके द्वारा वो कहां तर पाएगा। नहीं तो जीव का स्वभाव ही है नहीं कश्चित क्षण अभी जातम तिष्ठति अकर्म करता कार्यति हवश्य कर्मे सर्व प्रकृति जय गुण है। हेल्पलेसली वो इधर सिंफुल एक्टिविटी करेगा नहीं तो पायस एक्टिविटी करेगा। भक्ति समूह हम लोग रहते हैं हम इतना अलर्ट नहीं दूसरे को दोष देते हैं दूसरे को बोलते हैं कि आप एडपट हो आप फलाना हो एड़ा हो तो इसके द्वारा क्या होता है हम वैष्णव को नगण्य देखते हैं। चैतन्य भगवत जिसको बोलते हैं कि ये भक्ति में ये शक्ति है कि ब्रह्मांड का उद्धार कर सकता ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने ए वेद पुराण काय यथा ये बात सुने तो वैष्णव में ये शक्ति होते हैं। और हम लोग वो सब भूल गए थे इसलिए प्रभुपाद आके हमें वो सब मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन है स्वरूप स्थिति है उसका हमें ज्ञान दिया तो इसलिए ना हमें बहुत अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि खुरश्य धारा कभी वो बदलती जो भक्ति मार्ग यानी कि शार्प एनर्जी में चलना जैसा है इसलिए ना हमें प्रयास करना चाहिए। ऑफकोर्स मैं भी उस पर क्या बोलते हैं अनुशासित हूँ प्रयास करके हमारे जीवन का जो परफेक्शन प्राप्त करने के लिए लगे रहना चाहिए। ओके किसका कुछ कमेंट्स क्वेश्चन ऐड करना तो कर सकते हैं। भगवान को ब्राह्मण प्रिय है फिर भी द्रोणाचार्य को भगवान ने मारा ये ना अर्जुन के द्वारा भगवान ने द्रोणाचार्य को मारा ना इसका आंसर एक्चुअली मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं इतना महाभारत स्टोरी नहीं क्या है ये बोल सकता है कि भगवान ही कुछ तो योजना रहेगा। और भगवान जब ऐसा कुछ भगवान की जो कार्य है ना वो अलौकिक है वो भी जो भी क्रियाएं करते हैं वो मीन्स उसका उत्तर हम लोग में मेरे अंडरस्टैंडिंग ये है भगवान के कार्य को हम लोग ये नहीं समझ सकते। और द्रोणाचार्य निजी जन था भगवान ने उसको भेजे थे इन उनके शिष्यों को शिक्षा दे के आगे लेने के लिए साथ साथ भगवान की इच्छा था उस जीव को वापस लेने के लिए इसलिए ले सकते हैं। किनका कुछ बोल सकते तो उत्तर दे सकते यस प्लीज। हरि बोल नाइस। तो प्रश्न का आंसर ये है अगर भक्तों को भले ही ब्राह्मण क्यों ना हो भक्तों को अगर परेशान कर रहा है तो भगवान क्या करते हैं उसको भी बध करते ही है क्योंकि भगवान की भगवान का तो ये विशेषता है भक्त वत्सल है। थैंक यू प्रश्न। और किनका कुछ बाकी आप लोग बाकी सीनियर वैष्णव से और जानकारी ले सकते हैं। ओके ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की शिल प्रभुपाद की समावेत गौर भक्त वृंद की जय हरे कृष्ण।